हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सुनैना अपने साथ पुलिस को लेकर आई और नैना जल्दी से भागकर अपनी बहन के गले लग गई और उसके कंधे में अपना चेहरा छिपाकर रोने लगी। अरे दीदी, आप क्यों रो रही हो? आपकी कोई गलती नहीं है और अब कोई भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर पाएगा, सुनैना अपनी बहन नैना को समझाते हुए कहती है। चलिए, आप सबको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप लोग इस तरह से किसी बालिक लड़की की जबरदस्ती शादी या सगाई नहीं करवा सकते। पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर मौजूद बाकी सारे लोगों से कहता है, जिनमें नैना के माता पिता और उसकी सौतेली माँ के मायके वाले और कुछ रिश्तेदार थे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये सब इस लड़की की मर्जी से ही हो रहा था, पूछ लीजिए इससे, है ना नैना बेटा? इंस्पेक्टर की धमकी पर नैना की सौतेली माँ जबरदस्ती उसकी तरफ देखते हुए उससे हाँ बनवाने की कोशिश करती है, लेकिन नैना कुछ नहीं बोलती और उसके बदले सुनैना जवाब देती है, ये सब झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर, आप इन्हें ले जाइए और मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ, मेरी दीदी भी पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान लिखवा देंगी। और सुनैना की बात सुनकर इंस्पेक्टर और लेडी कांस्टेबल अपने साथ वहां मौजूद सारे मेहमानों और रिश्तेदारों को लेकर चली जाती हैं। नैना की सौतेली माँ गुस्से से अपने दांत पीसते हुए नैना और सुनैना की तरफ घूरती है। वो आदमी जो नैना से शादी करने के लिए आया था, इन सब के बाद नैना और उसके घर वालों से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। कुछ दिनों के लिए नैना की शादी की बातें रुक जाती हैं, बाकी सारे लोग भी अगले दिन घर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये नैना और सुनैना की मुसीबतों का अंत नहीं था, क्योंकि अब उनकी सौतेली माँ उनसे और भी बुरा बर्ताव करने लगी थी। घर का सारा काम उन दोनों से ही कराती थी, उनकी कोचिंग क्लासेस और कॉलेज भी बहुत कम ही जाने देती थी क्रमशः। दूसरी तरफ आदित्य की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। अगर उसके कजिन उसके आसपास होते या उससे बात करने की कोशिश करते थे तो उनके माता पिता उन्हें मना करते थे। वे सब कहते थे कि आदित्य मनहूस है और कोई भी उसके साथ ना रहे, क्योंकि इससे उनके साथ ही बुरा होता है। इन बातों पर सभी को तब विश्वास हो गया था जब एक बार आदित्य और विशाल साथ में क्लब से लौट रहे थे और उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन आदित्य को कुछ नहीं हुआ, विशाल को काफी सारी चोटें आई थीं। इसके साथ आदित्य सिन्हानिया इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस की था, इसलिए उसके चाचा चाची और बाकी सारे रिश्तेदार उससे मन ही मन बहुत जलते थे। वे सोचते थे कि आदित्य ना हो तो ये सारी प्रॉपर्टी, पैसा और जायदाद सब उनका हो जाएगा। लेकिन आदित्य के पिता ने अभी तक हर जगह आदित्य का नाम ही डलवाया हुआ था, क्योंकि सब कुछ उनकी मेहनत से बनाया हुआ कारोबार था, उनके इतने सारे होटल्स और इंडस्ट्री का बिजनेस था। आदित्य के पिता आदित्य से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी अपना प्यार इतना दिखा नहीं पाते थे। आदित्य ये बात समझता था, इसलिए वो घर पर नहीं रहता था। जब भी कभी घर आता था, उसे इस बात का बहुत एहसास होता था, इसीलिए वो सुनैना को प्रपोज नहीं कर पाता था और ना ही अपनी जिंदगी में शामिल कर पा रहा था। उसे यही लगता था कि जो कोई भी उसके लाइफ में आएगा, वो फिर उससे दूर हो जाएगा या उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। और इसी सब के बाद आदित्य छुट्टियां खत्म होने से पहले ही अपने कॉलेज हॉस्टल वापस आ जाता है। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन वो सुनैना से अपने दिल की बात नहीं कह पाता। हिम्मत होना तो दूर की बात, वो नहीं चाहता था कि सुनैना के साथ कभी कुछ भी बुरा हो। धीरे धीरे करके उसके परिवार के बारे में उसे पता चलता है तो उसे समझ आता है कि पहले ही सुनैना की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, वो उसे इसी तरह एक तरफा प्यार करेगा हमेशा। उन लोगों के लिए उसका अकेले का प्यार ही काफी होगा। लेकिन जब से सुनैना आदित्य से प्यार करने लगी थी, उसने कभी भी किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और ना ही कभी किसी और के बारे में सोचा था। दूसरी तरफ अपनी माँ के अत्याचारों से तंग होकर नैना और सुनैना एक रात अपना सारा सामान लेकर घर से भाग जाने का प्लान बनाती हैं। जैसे ही वे दोनों दरवाजे पर आती हैं और दरवाजा अंदर से खोलकर बस से बाहर निकलने वाली होती हैं, तभी घर के हॉल की लाइट जल जाती है और उन्हें सामने अपनी सौतेली माँ नजर आती है और उनके पिता भी। बाकी कोई रिश्तेदार या उनकी सौतेली माँ के मायके वाला उस दिन घर में नहीं होता, इसीलिए नैना और सुनैना ने उस दिन ही इस तरह घर से चले जाने का प्लान बनाया था। उन्हें लगा था कि यहाँ से निकलकर उनकी आधी मुसीबतें तो हल हो जाएंगी, लेकिन वहाँ से निकल जाना इतना भी आसान नहीं था। ये देखिए क्या करती हैं आपकी लड़कियाँ, इस तरह आधी रात को जरूर किसी लड़के के साथ भाग रही होंगी, दोनों मुझे तो पहले ही उनके लक्षण ठीक नहीं लगते हैं, नैना और सुनैना के दरवाजा खोलने से पहले ही उनकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है और तेज आवाज में चिल्लाकर अपने पति से बोलती है, हाँ तुम दोनों कहाँ जा रही हो इतनी रात को? ये सही वक्त क्या है घर से बाहर जाने का? और इतना सारा सामान क्यों है तुम लोगों के साथ? इस बार नैना और सुनैना के पिता सवाल करते हैं। दोनों बहनों को समझ नहीं आता कि वे क्या जवाब दें और दोनों एक दूसरे का मुँह देखने लगती हैं। आपको आज तक तो हमारी फिकर हुई नहीं कि इस घर में हमारे क्या हाल हैं, और आज जब हम दोनों ने पहली बार अपने बारे में सोचा है और अपनी आने वाली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यहाँ से निकलकर जा रहे हैं, तो आप इस तरह से सवाल करने खड़े हो गए हैं। रहने दो दीदी, क्या फायदा है इनसे कुछ भी बोलकर? आज तक कभी हमें समझने की कोशिश की है जो आज ही समझ पाएंगे? चलो हम दोनों चलते हैं। सुनैना अपनी बहन की बात सुनकर काफी मायूसी से बोलती है, हाँ सोनू तू ठीक कह रही है, चल हम अभी यही नहीं रुकेंगे। पहले भले ही हम छिपकर यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन अब सबके सामने से निकल कर जाएंगे। नैना भी मुड़कर वापस दरवाजे के पास खड़ी सुनैना के तरफ आते हुए बोलती है, क्रमशः